नमस्कार, आप सुन रहे हैं संयुक्त राष्ट्र समाचार सचिन गौर से। 1 मार्च 2019 के इस कार्यक्रम में शामिल है, नफरत भरे भाषण, लैंगिक असमानता सहित मानवाधिकारों के सामने कई अवरोध लेकिन सामूहिक प्रयास दिखा रहे हैं बेहतरी का रास्ता, वेनेजुएला संकट पर सुरक्षा परिषद में अमेरिका और रूस ने पेश किए परस्पर विरोधी प्रस्ताव लेकिन दोनों हुए खारिज, अफ्रीका में बंदूकों को शांत करने के लिए प्रयासों में यूएन और अफ्रीकी संघ की साझेदारी साबित हो रही है एक मजबूत आधारशिला, और यूएन की स्थापना के समय से ही काम करने वाले सर ब्रायन अर्कहार्ट के 100वें जन्म दिवस पर यूएन महासचिव ने उन्हें दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में आम लोगों के अधिकार खतरे में हैं, लेकिन उन्होंने आशा का दामन नहीं छोड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सामाजिक न्याय के लिए सशक्त आंदोलन भी हो रहे हैं जिससे प्रगति लाने में सफलता मिली है। महासचिव गुटेरेश इस सप्ताह जिनीवा में मानवाधिकार परिषद के 40वें सत्र को संबोधित कर रहे थे। मानवाधिकारों के नजरिए से महत्वपूर्ण आम जीवन के कई क्षेत्रों में अब तक हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा,
When billion people have been lifted out of extreme poverty in just a generation, more than 2 billion people have gained access to improved sanitation.
एक अरब से ज्यादा लोगों को एक पीढ़ी में ही अत्यधिक गरीबी से बाहर लाने में सफलता मिली है। 2 अरब से अधिक लोग अब बेहतर साफ सफाई में रह रहे हैं और 2.5 अरब लोगों के पास पीने का स्वच्छ पानी है। ये थे यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश, जिन्होंने चुनौतियों की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि लैंगिक असमानता भी बनी हुई है, नफरत बड़े पैमाने पर फैल रही है जिसे रोके जाने की आवश्यकता है। नफरत भरे भाषणों को उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक स्थिरता और शांति के लिए खतरा बताया और कहा कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए ऐसी बातें जंगल में आग की तरह फैल जाती हैं। वेनेजुएला में लंबे समय से चले आ रहे संकट का समाधान तलाशने के लिए इस सप्ताह 2 बार सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। गुरुवार को हुई बैठक में अमरीका और रूस की ओर से परस्पर विरोधी प्रस्ताव पेश किए गए लेकिन दोनों ही पारित नहीं हो पाए। 15 सदस्य देशों वाली सुरक्षा परिषद में अमेरिका की ओर से रखे गए प्रस्ताव में वेनेजुएला में नए चुनाव कराए जाने और अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में हुआन ग्वाइदो को मान्यता देने की मांग की गई थी, लेकिन इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया गया। रूस की ओर से पेश मसौदे में सरकार और विपक्षी दलों के बीच बातचीत की बात कही गई थी, लेकिन उसे जरूरी वोट नहीं मिले। इस साल जनवरी में नेशनल असेंबली प्रमुख हुआन ग्वाइदो ने मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की सत्ता की वैधता को चुनौती दी थी। मदुरो 2013 से राष्ट्रपति का पद संभाल रहे हैं और दूसरे कार्यकाल की शपथ उन्होंने इसी साल 10 जनवरी को ली। वेनेजुएला में तनाव बढ़ रहा है और मानवीय स्थिति बदतर होती जा रही है। हर 5 में से 4 अस्पतालों में जरूरी दवाओं और कर्मचारियों की कमी है और यूएन एजेंसियों की रिपोर्टों के अनुसार अब तक 34 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। संकट से जूझ रहे यमन में मानवीय राहत अभियानों के लिए कई दानदाता देशों ने 2019 में $2.6 अरब की सहायता राशि प्रदान करने का संकल्प लिया है। यह घोषणा एक उच्च स्तरीय प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस या संकल्प सम्मेलन में हुई जिसका आयोजन स्वीडन और स्विट्जरलैंड ने मिलकर किया था। सम्मेलन में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि बदहाल स्थिति में रह रहे लोगों की जरूरतों को पूरा करना अहम है, लेकिन उससे भी जरूरी संघर्ष का अंत करना है। इस बीच विश्व खाद्य कार्यक्रम को बंदरगाह शहर हुदायदा में खाद्य भंडार तक पहुंचने में सफलता मिल गई, जिसमें 50,000 टन से ज्यादा अनाज का भंडार है। इससे 37 लाख लोगों के लिए 1 महीने तक भोजन का इंतजाम हो सकता है। सरकारी सुरक्षा बलों और हूती विद्रोहियों के बीच लड़ाई के कारण इन भंडारों तक पहुंचना मुश्किल साबित हो रहा था। अनाज को अब परीक्षण के लिए भेजा गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रवक्ता अरवे वेर हुसेल ने कहा,
Tuesday visit was a great first step. We need now sustained access every day as much as possible.
मंगलवार को वहां जाना एक बड़ा कदम था। जितना संभव हो सके अब हमारे लिए वहां पहुंचना आसान बने रहना चाहिए हर दिन। विश्व खाद्य कार्यक्रम स्टाफ के लिए भी यह जरूरी होगा। संयुक्त राष्ट्र में राजनीतिक मामलों के लिए सहायक महासचिव रोजमेरी डिकालो ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी अफ्रीकी महाद्वीप पर शांति और सुरक्षा के प्रयासों की आधारशिला बन गई है। अफ्रीका में साइलेंसिंग द गन्स या बंदूकों को शांत करने से जुड़ी एक पहल पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य संघर्षों की रोकथाम करना और उनका हल निकालना है। अफ्रीकी संघ ने 2013 में संकल्प लिया था कि फिलहाल जारी संघर्षों का भार अगली पीढ़ी पर नहीं पड़ने देना चाहिए, इसीलिए एक मास्टर प्लान के तहत सभी संघर्षों और बंदूकों को 2020 तक शांत कर देने के लिए व्यवहारिक कदमों को उठाया जा रहा है। सहायक महासचिव ने सचेत किया कि कई चुनौतियां अफ्रीकी राष्ट्रों के सामने अब भी बनी हुई हैं। प्राकृतिक संसाधनों का कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार कायम है और राजनीतिक प्रक्रिया में कुछ समुदायों को अब भी वंचित रखा जा रहा है। पिछले साल जून में एक ऐतिहासिक समझौते के साथ ही पूर्व युगोस्लाविया की मैसेडोनिया गणराज्य और ग्रीस में लगभग 27 सालों से चले आ रहे विवाद का निपटारा हो गया। पूर्व युगोस्लाविया की मैसेडोनिया गणराज्य को अब उत्तर मैसेडोनिया गणराज्य के नाम से जाना जाएगा। ग्रीस ने पूर्व युगोस्लाविया के मैसेडोनिया गणराज्य नाम को मान्यता देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसके उत्तरी प्रांत का नाम भी मैसेडोनिया है। उसका दावा था कि ये उसकी संप्रभुता को चुनौती है और सिर्फ उसी के प्रांत को मैसेडोनिया नाम से बुलाया जाना चाहिए। विवाद सुलझाने के लिए दो दशकों तक यूएन के विशेष दूत मैथ्यू निमित्स की मध्यस्थता में लंबे दौर की वार्ता हुई, जिसमें कई उतार चढ़ाव आए। यूएन समाचार के साथ एक बातचीत में निमित्स ने बताया कि वो समझौते से खुश हैं और सकारात्मक परिणाम मिलने में उनका विश्वास हमेशा बना रहा।
I'm pleased, you know, because I've worked on this project for many, many years and we've had our ups and downs and
मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैंने कई साल तक इस प्रोजेक्ट पर काम किया। हमें बहुत उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। हमें ये देखना था कि गंभीर विवाद को दो देश आपस में सुलझा लें। मुझे आशा है कि इस मामले में भविष्य अतीत से बेहतर होगा और ये सोचकर मुझे अच्छा महसूस होता है। यूएन न्यूज़ ने जब उनसे पूछा कि इतने लंबे समय तक उन्हें कई किरदारों से मिलने का मौका मिला, उनके साथ काम करने का अवसर मिला, तो उन्होंने कहा, बहुत से लोगों को लगता है कि कितनी बोरियत भरी बात है कि 24 साल तक हम एक शब्द एक नाम पर ही उलझे रहे। लोग एक नाम को क्यों नहीं सुलझा सकते? लेकिन नाम तो एक बड़ी हिमशिला का बस एक सिरा था। यह असल में दोनों देशों की पहचान की भावना से भी जुड़ा था, जिसे हमें समझना था। युगोस्लाविया के विघटन के बाद पूर्व युगोस्लाविया का मैसेडोनिया गणराज्य बाल्कन क्षेत्र में अपनी जगह बना रहा था, इसलिए इसकी ऐतिहासिक और भावनात्मक पृष्ठभूमि रही है। इतने बड़े लंबे अंतराल में नेता बदलते रहे और कई नए किरदार आए। ऐसे में जब नेता बदल गए तो क्या मैथ्यू निमित्स को बार बार नए सिरे से प्रयास करने पड़े? उन्होंने कहा,
Leaders change and I do believe that leaders have a big impact on history.
नेता बदलते हैं और मैं मानता हूं कि इतिहास पर नेता अपनी बड़ी छाप छोड़ते हैं। इतिहास अपने हालात बनाता है, लेकिन नेता प्राथमिकताएं तय करते हैं, जोखिम लेते हैं। मैं सकारात्मक पक्ष पर ध्यान देना चाहता हूं और मेरा मानना है कि ये समझौता इसलिए हुआ क्योंकि दोनों नेता, ग्रीस के प्रधानमंत्री और उत्तर मैसेडोनिया गणराज्य के प्रधानमंत्री ने वाकई इस मुद्दे को हल करने का ठान लिया था और फिर अपनी पूरी राजनीतिक ऊर्जा झोंक दी। उन्होंने माना कि कुछ जोखिम होंगे, कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी वो लगे रहे और आपसी रिश्ते भी दोनों में विकसित हुए, जिससे चीजों को होने में आसानी हुई। संयुक्त राष्ट्र में लंबे समय तक काम कर चुके सर ब्रायन अर्कहार्ट के 100वें जन्मदिन पर महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। सर ब्रायन अर्कहार्ट यूएन के शुरुआती अधिकारियों में रहे हैं और 1945 में जब यूएन का जन्म हुआ तो सर ब्रायन उस लम्हे को पास से देखने के लिए मौजूद थे। महासचिव गुटेरेश ने अपने संदेश में कहा कि संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सर ब्रायन ने गहरी छाप छोड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवा में सैद्धांतिकता, समर्पण और निष्पक्षता के नए मानक गढ़े हैं। 20वीं शताब्दी की बड़ी घटनाओं को नजदीक से देखने वाले और अभूतपूर्व काम करने के लिए नाम कमाने वाले सर ब्रायन अर्कहार्ट को दुनिया भर से बधाई संदेश मिले हैं। सर ब्रायन विशेष राजनीतिक मामलों के अवर महासचिव के पद से रिटायर हुए। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।